देखिए जो लफ्ज़ गुजरा हमारे पास इस ज़िमन में वो क्या था, पहला लफ्ज़ मुतवफ़ी का, इसको हाईलाइट कीजिएगा। मुतवफ़ी का लफ्ज़ वही है जो अभी हमने आखिर में पढ़ा, युवफ़ी हिम, वफ़ा है ये लफ्ज़ असल में, वफ़ा या किसी को पूरे का पूरा ले लेना, ये है वो लफ्ज़ जिसको गलत समझकर आज खुद को मुसलमान ही कहने वाला एक फ़िरका, अगर समझ आ जाए तो फिर तो नाम लेने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी तो बाद में पूछ भी लीजिएगा, कि जो इस आयत को दलील बनाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात को साबित करते हैं। वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और उनकी कब्र भी उन्होंने आजाद कश्मीर में साबित की, और उनकी जगह जो हजरत ईसा के दोबारा आने वाली सारी हदीसें थी वो गुलाम अहमद कादियानी साहब के नाम पे रखी और कहा कि ये उनकी जगह पे दोबारा आएंगे। यानी आज जो कादियानी मजहब है उनकी बुनियाद में ये आयते हैं। वो कहते हैं कि हजरत ईसा फौत हो चुके हैं, जैसे नसारा कहते हैं ना कि वो फौत हो चुके हैं, इसी तरह ये भी कहते हैं, क्योंकि अगली आयतों में भी ये आ रहा है ना कि लोगों ने इस मामले में इख्तलाफ किया, क्योंकि अगली आयतों में हम पढ़ेंगे इसमें कैसे लोगों ने ऐसी बातों में इख्तलाफ किया था। तो आज मुसलमानों का एक गिरोह कहता है कि हाँ हजरत ईसा फौत हो चुके हैं, हालांकि ये हमारे अकीदे का हिस्सा है कि हजरत ईसा जिंदा है और आसमान पे। 100 से ज्यादा हदीसें तवातर के दर्जे की, तवातर आप कहें कि वेरी स्ट्रॉन्ग नरेशंस मौजूद हैं कि जिसमें हजरत ईसा के दुनिया में आने का तस्कर है, कहाँ आएंगे, बैतुल मकदस में आएंगे, मुसलमानों की नमाज तैयार होगी और वो नमाज के लिए पेश किए जाएंगे, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, ये उम्मत खुद एक दूसरे की इमाम है, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, नमाज पढ़ेंगे, फरिश्तों के हाथों पे इनके हाथ होंगे, उनके बालों में से पानी के कतरे निकल रहे होंगे, पूरी दुनिया के लोगों को उनकी खुशबू आने लग जाएगी। ये वही वक्त होगा जब दुनिया में दज्जाल भी आ रहा होगा या जूझ माजूझ के फितने होंगे, ये कुर्बे क़यामत की बड़ी अलामतों में से है। एक किताब है ये जो तफहीमु सुन्ना की, आप पढ़ के देखिए, अलामत है क़यामत का बयान, पूरी डिटेल से आपको ये बात समझ आ जाएगी, और फिर इनके हाथ से दज्जाल मरेगा, ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन कुछ अपने बातिल अकायद को आम करने के लिए लोगों ने कहा, देखो मुतवफ़ी का फौत करता हूँ आपको, तो बस वो तो फौत हो चुके हैं, और वो जितनी हदीसें थी हजरत ईसा बारी वो उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी साहब के नाम लगा दी, और वो कहते हैं नहीं मसीह नहीं आएंगे, मसीले मसीह आएंगे, और मसीले मसीह उनके ख्याल में उनके वो बड़े कायद हैं, और इसके पीछे भी बड़ी ताकतों के हाथ हैं, आप उस मजहब की हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए। और हकीकत यही है कि उन्होंने इस चीज़ को पेश करके एक पूरे मजहब की बुनियाद पे सारी दुनिया के नॉन मुस्लिमों से जो एड लेके उस मजहब को अपना लिया, सबसे ज्यादा आज इस्लाम के नाम पे जिस फिरके को प्रमोट नॉन मुस्लिम्स करते हैं वो ये, क्योंकि उनमें उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट, और वो कहते हैं कि फौतों के, और चूंकि हजरत ईसा के बारे में आता है कि लुद के मुकाम पे आएंगे, और ये साहब जो लुधियाना में पैदा हुए थे तो कहते हैं वो लुधियाना ही है, और उनकी कब्र भी पेश की जाती है। वजह क्या है, अपनी मर्जी की बातें सिर्फ, और दीन को जो खूबसूरत करना है। तो आइए देखिए कि क्या हजरत ईसा फौत किए गए थे, लस मुतवफी ये लफ्ज़ जो है कि जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, हम इसका थोड़ा सा अंदर से पोस्टमार्टम करके देखते हैं। देखिए लफ्ज़ क्या है, तवफ़ा, तवफ़ा का असल मानी क्या होता है, लेना और वसूल करना, जैसे आप कहते हैं ना रिसीव कर लिया आपने, रूह कब्ज़ करने का जिसका मानी है ना, ये मजाजी है, असल लफ्ज़ नहीं है। इंग्लिश लफ्ज़ अगर आपने सुना होगा ना टू रिकॉल, तो ये वही लफ्ज़ है। इधर किसी ओहदेदार को इसके मनसब से वापस बुला लेना, अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ ये बात क्यों की, क्योंकि बनी इसराइल सदियों से मुसलसल नाफरमानियाँ कर रहे थे, बार बार आगाह करने डराने के बावजूद इनके तरीके जब ना बदले, कई नबियों को इन्होंने कत्ल किया और कर चुके थे, हर नेक बंदे के खून के प्यासे हो चुके थे, जो इनको नेकी की दावत देता उसके दुश्मन बन जाते। तो अल्लाह ने आखिरी हुज्जत तमाम की थी ईसा की सूरत में, ये समझिएगा। अब यहाँ आपको याह्या के साथ तकाबुल भी होगा कि हजरत ईसा और याह्या दोनों बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं, जैसे मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानों में आखिरी नबी हैं, ठीक है। जो मुकाम नबी सल्लम का ओवरऑल है ना, वही मुकाम एक छोटी तस्वीर में कर दें तो हजरत ईसा का, क्योंकि हजरत ईसा के बाद कोई नबी नहीं आया नबी सल्लम तक बीच में, ठीक है। अब क्या था कि हजरत याहया को तो इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की तो कर दी, खत्म हो गई। हजरत ईसा के कत्ल की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का फैसला है कि रसूल कत्ल नहीं किए जाते। तो जब रसूल कत्ल नहीं किए जाते तो क्या होता है, सुनिए बस। अभी देखिए, दुनिया में जितनी भी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, सूरत अल अराफ से आगे अंबिया की, आप ये चीज समझ जाएंगे, वहां अगर आगे कभी नहीं पढ़ा आपने, कि रसूलों की दुश्मनी की लोगों ने। हजरत सवाले के कत्ल के लिए लोग जमा हो गए, नबी सल्लम के कत्ल के लिए जमा हो गए हिजरत की रातें, लेकिन अल्लाह उस वक्त नबी को हुक्म दे देता है कि हिजरत कर जाओ। हिजरत की रात नबी सल्लम के साथ भी ये हुआ, हजरत सवाले और बाकी सारे अंबिया के साथ हुआ। जिस तरह कत्ल के वक्त अल्लाह नबी को उस जगह से निकलवा देता था ना, हजरत ईसा की भी ये हिजरत ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम नबी जमीन के एक टुकड़े से हटके दूसरी तरफ चले जाते थे, हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमान पे हिजरत करा ली। दैट्स इट। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को कत्ल होने से बचा लिया। इतनी मुश्किल बात नहीं है। जो अल्लाह ऊपर से बंदे को नीचे भेज सकता है, क्या नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकता? जब इन्होंने इन दोनों की बात ना मानी तो अल्लाह ताला ने फिर इनके साथ यानी एक इंतकाम लिया। इन्होंने हजरत याहिया को कत्ल करवाया, एक रक्कासा थी जिसकी फरमाइश पे उनका सर कटवाया गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रोमन सल्तनत से सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की। और फिर इस तरह अल्लाह कहते हैं कि आ जाओ वापस। याद रखिए, सूरत इब्राहिम में हम पढ़ेंगे कि वाइस्ताज़न रब्बुकुम लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, कि तुम्हारे रब ने ये कह दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत बढ़ाऊंगा, वलाइन कफर तुम इन आज़ाबी लशदीद, और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा शदीद है। हम जिस नेमत की कदर नहीं करते वो नेमत हमसे छिन जाती है, फिर हम अपने नसीब पे ना रोएं, अपने करतूत पे रोएं। कभी कोई चीज़ आपको मिल के छीने ना तो रोएं कि मैंने इसकी कदर नहीं की। और ये हम सबके साथ होता है, जब लोग नबियों का और नेक लोगों का ख्याल नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, उनसे फ़ायदा नहीं लेते। कदर करना ये नहीं होता कि उनके पाँव दबाएं, कदर ये होता है कि जो बात वो कहते हैं उसको मानो। तो अल्लाह उस बंदे को फिर वहां से ले जाता है। बनी इसराइल पर जिल्लत अल्लाह ने लिख दी, तो गोया कि यहाँ अल्लाह सुबहान तआला ने ये बात बयान करी कि ईसा को मैंने जिस्म और रूह के साथ ऊपर ले गया हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, मुतवफी का क्या है, पूरे का पूरा ले गया हूँ। आम हालात में क्या होता है, जिस्म हमारे हाथ में रह जाता है ना तो रूह ऊपर चली जाती है, तो मुतवफी का क्या, पूरे का पूरा तुझे लेने वाला हूँ, यानी बदन और रूह के साथ लेने वाला हूँ। फर्क बस इतना है। देखिए कि ये इंग्लिश जुबान में भी आप समझ सकते हैं कि बाज दफा कुछ लफ्ज हैं उनके मानी फर्क होते हैं। बस आप देखिए कि इंग्लिश का एक लफ्ज अगर आप देखें, मॉनिटर, क्या है मॉनिटरिंग? कभी आप किसी हॉस्पिटल में खड़े हैं और वो कहेंगे कि जी हम मरीज को मॉनिटर कर रहे हैं, क्या मतलब? चेक कर रहे हैं कि उसका दिल जिस्म सब ठीक काम कर रहे हैं। किसी कंप्यूटर वाले से पूछे वो कहेगा मॉनिटर क्या है, वो जो नीचे जिस पे कंप्यूटर चलता है, सुना हुआ ना कंप्यूटर का मॉनिटर। किसी क्लास में आ जाए तो मॉनिटर कौन है, जो सबसे अच्छा बच्चा है और जो दूसरों को कंट्रोल करता है। आप कोई कह नहीं जी मुझे तो लफ्ज मॉनिटर का एक ही मानी चाहिए, हैं कि वो मरीज को मॉनिटर कर रहे हैं, यानी मरीज को पूरे हॉस्पिटल में मॉनिटर लगा रहे हैं, बात नहीं बनेगी ना। इसी तरह देखिए लफ्ज स्टेबल, स्टेबल क्या, कोई किसी मरीज से पूछे क्या हाल है, उसका कहेंगे कि अब मरीज स्टेबल है, यानी अब पहले से बेहतर है। लेकिन आप स्टेबल को देखें तो अस्तबल को कहते हैं, घोड़ों को बांधने की जगह को कहते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगर आप किसी और सेंस में देखें तो स्टेबिलिटी बहुत किसी स्ट्रांग है, तो अगर आप किसी के बारे में कह दें कि हाँ मरीज जो वो स्टेबल में है, यानी वो अस्तबल में है। हर जुबान के अंदर लफ्ज मौजूद है, साइन इन साइन आउट, प्रपोजिशंस भी हैं इधर बहुत है। तो ये एक छोटी सी बात समझ लें तो इंशाल्लाह ये बात वाजह हो जाएगी कि दुनिया की चीज़ों को पढ़ने के लिए हम उस जुबान की डिक्शनरी यूज़ करते हैं। अगर आपको इंग्लिश के किसी लफ्ज में डाउट हो, आप जाके गूगल में डाल के उसके सारे मानी ले लेंगे, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह कुरान की डिक्शनरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो मानी नबी ने बता दिया उसको आप फिर अपनी अकल से और डिक्शनरी से नहीं पढ़ेंगे, वरना गुमराह हो जाएंगे। इतनी लंबी चौड़ी अल्फाज की वजाहत करते जाएं और उसी में खो जाएं और तफसीर पे नजर न रखें, ये बात जो है वो इंसान के अकीदे का जोफ बन जाती है। तो नबी ने जब कह दिया कि हजरत ईसा ऊपर उठा लिए गए, तो मुतवफी का वराफियो का इलैया में ये सारे मानी हमें आ जाते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया उनके वार से, और अल्लाह ताला के हुक्म से वो बच के चले गए। दैट्स इट। अब इसकी बेस पे आप कोई कुछ भी कहे, कैसे कहे, लेकिन आप देखिए कैसे अकायद वाले इतने पक्के होते हैं अपनी बात में। बातिल की जड़ें ज्यादा गहरी हैं उनके दिलों में हक की जड़ों की वजह से। और आप देखिए कि ये लफ्ज तो वफी या वफ़म पढ़ रहे हैं, ये पीछे भी तो हम आयत 25 में नहीं पढ़ चुके, फकैफ इज़ा जमाना हम लियौम ला रईब फी वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। तो आप वहां ये तर्जमा करेंगे कि क्या होगा उस दिन जिसके आने में कोई शक नहीं, और हम फौत कर देंगे हर नफ्स को जो उसने कमाया। ये नहीं है ना, पूरे का पूरा देंगे। तो वफात लफ्ज ऐसी है जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना फुला अल्लाह को प्यारे हो गए, करें इसका इंग्लिश में तर्जमा, कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता। या कभी हम किसी के बारे में क्या कहते हैं कि उनकी तो रूह ही चली गई, जो उनका जिस्म ठंडा हो गया। तो इसी तरह यहाँ लफ्ज वफा से फौत होना नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा उठाना है, ले जाना है। सूरह जुमर आयत 42 में भी ये लफ्ज आता है, अल्लाहु यतवफ्फल अन्फुस हीना मौतिहा, अल्लाह मौत की वक्त रूहों को कब्ज कर लेता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जो भी नहीं मरा इसकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है। तो बहरहाल जिसको नहीं मानना होगा वो तो ये सारी बातों को भी कहेगा तावील है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ बात बता दी। अब आखिरी आयात है जो हमारे आज के सबक की, जिसमें आयत मुबाहला आप कहेंगे, ये बिल्कुल वही वफद नजरान के सामने सब कुछ हो रहा है। कल आपको बता दिया गया था इस सबक के शुरू होने में कि ये सारी आयतें वफद नजरान के सामने हो रही हैं जो हजरत सल्लम के पास आए थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो तुम ईसा को इसलिए खुदा कहते हो ना कि बिन बाप के पैदा हुआ, राइट? तो ये तो बताओ कि फिर आदम के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आयत 59, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही का मसली आदम, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है। कैसे पैदा हुए थे आदम? खलकहु मिन तुराब, उसने पैदा किया उसको मट्टी से। सुम्मा काल लहू कुन फयकुन, फिर इसको कहा हो जा और वो हो गया। यानी अगर ईसा इस वजह से खुदा है कि वो बिन बाप के पैदा हुआ है, तो फिर आदम को तो खुदा का भी खुदा होना चाहिए कि उनकी तो माँ भी नहीं थी। बात है ना, कितना देखे लॉजिकल पॉइंट है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया था, तो क्या वो आदम को पैदा नहीं कर सकता? ये तो एक मुमकिन सूरत अल्लाह ताला ने बयान कर दी थी। तो नतीजा क्या निकलता है कि बास दफा ऐसी चीजों को लोग बुनियाद बनाते हैं जो उनको समझ आती है, दूसरी नहीं आती। तो कहा गया कि बताओ फिर आदम के लिए क्या बात है? अलहक मिन रब्बिका, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। फला तकुम मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में ना आना। ये किसको कहा जा रहा है? बज़ाहर देखिए नबी सल्लम को कहा जा रहा है, लेकिन आज हर उस शख्स को जो इस अकीदे का हामिल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह अब कोई दूसरा आ गया। इसलिए अब आयत 61 में अल्लाह ताला इन वफद नजरान वालों को नबी सल्लम के साथ मुबाहले की दावत देते हैं। फमन हाज कफी मिम बादी मा जाक मिनल इल्मी, तो नबी जो भी इस मामले में आपसे हुज्जतबाजी करे, इसके बाद किसके पास सही इल्म आ चुका, यानी आपके पास क्या आ गया? देखिएगा लफ्ज मिनल इल्म, अल इल्म की बात है, पूरा नहीं आया, चलो मिन तो आया, कुछ तो आया, ठीक है। ये जो आपसे बहस कर रहे हैं, नजरान से एक वफद बन के आए हैं, हुज्जत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो फिर आओ इनसे कहो क्या मुबाहला कर लें। मुबाहला क्या होता है? बहीला से, जब दो गिरोहों में दलाइल की बुनियाद पर फैसला ना हो, तो फिर उनको चैलेंज दिया जाता है, क्या हो खुले मैदान में और क्या करें। फकुल तालु नद वबना अना वबना अकुम, बस आप इनसे कह दीजिए कि आओ हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम बुलाओ अपने बेटों को। व निसा अना व निसा अकुम, और हम बुला लेते हैं अपनी औरतों को और तुम बुला लो अपनी औरतों को। व अनफुसना व अनफुसकुम, और हम भी आ जाते हैं और तुम भी आ जाओ। फिर क्या करें आकर? सुम नबतहिल, फिर हम सब मिलकर दुआ करें। फनजल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर हम लानत करें अल्लाह की इन पर जो झूठे हैं। यानी ये दावत कबूल कर लो, तो आओ हमारे साथ मुबाहला कर लो, और फिर हम एक दूसरे के ऊपर ये बातें करते हैं। और इन हाज़ लहुवल क़ससुल हक़, यकीनन यही बिल्कुल सही तरीका है, सही किस्सा है, ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा किस्सा है। हकीकत क्या है कि वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। व इन्नल्लाह लहुवल अजीजुल हकीम, और यकीनन अल्लाह ताला ही जबरदस्त और कमाले हिकमत वाला है। ये दावत दी थी कि आओ मान जाओ, तुम भी कह दो कि अगर हम सच्चे हैं तो मुसलमानों पे आग बरसे, और आपने उनको दावत दी नजरानियों को। उन्होंने कहा अच्छा हम सोच के बताते हैं। बैठे उनके बड़े, कहने के नहीं, अगर आज हमने इस दावत को कबूल कर लिया तो ये वादी आग बरसाएगी, तुम्हें से एक भी वापस नहीं जाएगा। छोड़ो मुबाला होने को, ठीक है जी, आप अपने घर खुश, हम आपको जिजिया देने को तैयार हैं। और भारी कीमत पे जिजिया वगैरह देने पे सुलह करके चले गए थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं फाइन तवल्लो फाइन अल्लाह अलीमुम बिल मुफ्सिदीन, फिर अगर ये पीठ मोड़ लें तो अल्लाह ताला खूब जानता है मुफ्सिदों को। तो ये था आखिरी हिस्सा। यहाँ देखिए कि इस सूरत के निसफ अव्वल का पहला और दूसरा हिस्सा पूरा हो गया। पहला क्या था, 1 से 32, ठीक है, जो पहले, ये दूसरा जो कल से शुरू किया हुआ है, ये कौन सा है, आयत 32 से लेकर 63। तो आप देख सकते हैं कि ये आयात जो है हम सबको क्या बताती हैं। अब इसमें मुबाइले के हो सकते हैं कुछ सवाल हो, इस पे शिया लोगों ने बहुत कुछ अकायद बना लिए। वो कहते हैं देखो अल्लाह ताला ने इधर क्या कहा, बनान अबना को निशान अनिसा को अनफुसन अनफुसा को, वो कहते हैं कि इसमें लंबी बात है जो हमारा इस वक्त मौजू नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये छोटी सी इशारे इसलिए देती हूँ कि इसी कुरान से लोगों ने अपने बातिल अकायद अखज किए। वो कहते हैं कि देखो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को नहीं बुलाया और फातिमा को बुलाया, और लंबी कहानी है, क्योंकि जब ये बात हो रही थी तो उस वक्त नबी सल्लम ने बुलाया अपने बच्चों को कि आओ बाहर चलते हैं। तो कहते हैं कि आपने सिर्फ फातिमा और उनके बच्चों को बुलाया, तो लिहाजा सहाबे बैत में से सिर्फ आप फातिमा और उसके घर वाले हैं और अजवाज मुतहरात नहीं है। हालांकि ऐसी कोई कहानी जब आप इसको इल्मी सतह पे जाके हिस्ट्री से खोल के देखते हैं तो उस वक्त तो वो लोग मौजूद ही नहीं थे जिनकी बात की जाती। तो कहने का मतलब ये है कि दुआ कीजिए कि जो सूरत के शुरू में बात हुई थी कि फाम लजीना आमनु, ईमान वाले इस किताब से हिदायत ले जाते हैं, मुहकमात के पीछे पढ़ते हैं, और दूसरे लोग जो होते हैं वो मुतशबिहात के पीछे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत में रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही व सहाबतिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त चूँकि पूरा हो गया हुआ इसलिए आगे नहीं करते, लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा समझ में आया जो मुझे लगा कि आपका रह गया, तो इंशाल्लाह कल हम चंद लफ्ज़ों में उसमें बात कर लेंगे। कोई बात जो आपका कमेंट, जो आप कहना चाहें, नमाज के आसान तैयार रखें जी। आप प्लीज़ जी, बस देखिए कि जो चीज़ सुनी सुनाई होती है वैसी होती है ना जी। आप जी, आप बताइए। देखिए कुरान सुना इस पे कुछ नहीं कहता, लेकिन ये बात मिलती है कि जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके बाद फिर आम बच्चों और आम औरतों वाला मामला था, और अगर कम हुआ या ज़्यादा से फ़र्क क्या पड़ता है, राइट। बस वही बात है ना कि हम हद पे नहीं रहते। अब ऐसी चीज़ों में कहानियाँ, जैसे सूरह यूसुफ पे हमने कहानियाँ जड़ घड़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि इस पे भी की हो, लेकिन मैंने इस बारे में कभी इतना पढ़ा नहीं, और मुझे कोई अफसोस भी नहीं कि मुझे नहीं पता कि बीबी मरियम कितनी देर प्रेग्नेंट रही थी, राइट। असल मकसद देखना है जी। बाहिला से, बाहिला कहते हैं बददुआ देने को, कि हम तो इसके तरीका ये होता है कि दोनों खुले मैदान में आ जाते हैं, फिर एक ग्रोह कहता है कि अच्छा अल्लाह ताला हम हक की तरफ से हैं, हम कहते हैं कि ईसा जो थे वो खुदा नहीं थे, ठीक है, जो भी मुसलमानों का अकीदा है। तो हम ये, अगर हम ठीक हैं तो तू हमारी मदद कर, नहीं तो फरीके सानी पे आग बिछा दे या उनको तबाह कर दे। फिर दूसरा फिरका आता है, वो कहता है नहीं, हम कहते हैं कि ईसा खुदा का बेटा ही है और हमें इस पे यकीन है, और अगर ये बात झूठ है तो फिर दूसरे के ऊपर तू तबाही कर देना। तो इसमें भी फैसला अल्लाह की तरफ से हो जाता है। हुए ऐसे मुबाहले तारीख में बहुत कुछ है, लेकिन यह है कि इन लोगों ने फिर जुरत ही नहीं की थी। ये वही करता है ना जिसको अपने हक पे होने का यकीन होता है। तो ये बिल्कुल आखिरी हद होती है, जैसे मनाजरे डिबेट और उनसे सबसे आगे जाने के अंदर, बाहला नबतहिल बहीला से, ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही व सहाबतिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ऑनलाइन पे माइक होल्ड कीजिए और टेक्स्ट खोल दें।